بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله سبحانه وتعالى بہت بڑے اور اللہ کے خزانے بہت بڑے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کھانا پینا اللہ کے ذمے نہ ہو. رزق پہنچانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ننھے سے کیڑے کو بھی نہیں بھولتے، مچھلیوں کو سمندر میں، پرندوں کو درختوں میں، زمین میں، جانوروں کو جنگلوں میں، کہاں کہاں اللہ پاک رزق پہنچاتے ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو، آدمی کو، اپنے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں روح پھونکی، اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر خلیفہ بنایا اور ساری دنیا کو اس کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا. پھر ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں. اگر سارے کے سارے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سے مانگیں اپنی تمام حاجات، ضروریات، پریشانیاں، جو کچھ ان کو چاہیے، صحت، آرام، خوشی، سونا، چاندی، گھر بار، اللہ پاک ہر ایک کو دینے پر قادر ہیں، اور سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. دن رات کا خرچ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتا. آدمی 1000 تک گنتی کر سکتا ہے، کاؤنٹ، اور 1,00,000 تک کاؤنٹ کر سکتا ہے، مگر اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. میرے محترم بھائیو، دوستو، ہمارے بزرگوں اور ہماری مقدس مائیں اور بہنیں، ہماری، آپ کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کامیابی اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی مان کے چلیں. اللہ نے جو پیارے طریقے بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان پر چلیں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں. اللہ پاک کو ہماری عبادت، ذکر، تسبیح، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنے نیک کام ہم کریں گے ہمارے لیے فائدہ. اللہ کی عبادت تو ہم سے پہلے بھی ہزاروں سال سے فرشتے آسمان کے چپے چپے پر عبادت کر رہے ہیں، زمین کے ہر علاقے میں. اور یعنی آپ سجدے کی جو آیات ہیں ان کا اگر ترجمہ پڑھیں تو وہ آپ کو مفہوم بتائیں گے کہ اللہ پاک کے لیے ساری چیزیں تسبیح میں ہیں، سجدے میں ہیں. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا ذکر کر کے آخر میں انسان کی باری آئی تو فرمایا کہ بہت سے انسان بھی یاد کرتے ہیں اور بہت سے نہیں بھی یاد کرتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے ہمارا اپنا فائدہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی ایک عمل توفیق دے دے. دنیا کی کسی بھی چیز میں آدمی کا دل لگتا ہو، کسی چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہو، اچھائی نظر آتی ہو، چاہے وہ علم کی وجہ سے ہو، نالج کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے ہو، یا طاقت کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے کسی چیز میں کوئی خوبی نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کے خزانے سے آئی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، سب اللہ کے قدرتی، سب اللہ کے قبضے میں. موت اور زندگی، صحت اور بیماری، خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، سب اللہ کے خزانے میں. جو آدمی اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے گا ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک ہو جائے گا. گھر کے حالات، معاشرے کے حالات، مسجدوں کے حالات، زمین کے حالات، اکانومی، چیزیں، بارش، جس چیز سے آدمی پریشان ہے اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے اللہ پاک ہر چیز ٹھیک کر دے. جہاں کوئی مسئلہ فساد آیا تو آدمی سوچے میرے اندر کیا کمی ہے، میں کیا چیز بھول گیا آج. یہ تھوڑی دیر کا امتحان ہے، اس کے بعد ملک الموت آئے اور امتحان ختم. آدمی کی روح ملک الموت لے گئے، آدمی کا بدن اور جسم زمین میں جا کے ختم ہو گیا، اور اس کے مال، اسباب، گھر، کاروبار، جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ رشتہ دار لے گئے. اب صرف بیچارے اس کے پاس رہ گئے اعمال، اچھے یا برے. अब कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का गढ़ा। और फिर आखिरत में जब उठाया जाएगा तो किसी को अगर तंग किया, किसी पर जुल्म किया, तो वो लोग जमा हो जाएंगे कि इसके अच्छे अमाल मुझे दे दो। तो यहाँ से लेके आखिरत तक लूट मची है, और शैतान ईमान का चोर है, इसको किसी तरीके से फेल करा दो। इतने सारे खतरात में आदमी घिरा हुआ है और उसका कुछ भी नहीं है, और उसका दोस्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला। उसके लिए सारे हुकूक भी अदा करना, सबको देना, अल्लाह के जिक्र में रहना, किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं लाना, अल्लाह के वास्ते अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह दोस्त हो गया तो सब काम हल हो गया। आदमी सोचे कि एक जमाना आएगा, कब्रों से निकलेगा आदमी और अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा, और लोग भाग रहे होंगे हशर के मैदान की तरफ, और एक तारीकी, मगर जो लोग वुदू करते हैं और वुदू से नमाज के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए एक नूर होगा मोमिनीन के। और लोग आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम कब्रों में कितने दिन रहे, तो कोई कहेगा कि 10 दिन रहे। जब आखरत को देखा, फरिश्ते और जन्नत जहन्नम और पुल सिरात और आखरत की हकीकतें जो पढ़ते थे तालीम में, अब नज़र आ रही हैं, तो अब वो भूल जाएगा कि कब्र में कितने दिन रहे। हजारों साल से पड़े थे, लेकिन सोचेगा कोई 10 दिन के करीब रहे होंगे। जो ज़्यादा कोई सोचने वाला होगा वो कहेगा कि भाई सिर्फ एक ही दिन रहे कब्र में। सूरह ताहा में इसका मजमून है, और भी जगहों पे। और फरमाया कि पूछा जाएगा कि दुनिया में तुम्हारी उम्र कितनी थी, कितने साल रहकर आए दुनिया में, तो कहेगा कि एक दिन या उससे भी कम, एक सुबह या एक शाम, बस वहां जाके सब भूल गया। अब कह रहा है कि एक दिन, एक सुबह या एक शाम रह के आया हूँ दुनिया में, बस। तो ये हकीकतें आदमी पहले समझ ले तो उसका इम्तिहान का पर्चा फायदेमंद हो जाएगा। पुल सरात पर से गुजरना होगा हर आदमी को, और लोग उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर रहे होंगे, किसी को पसीना, लोग परेशान होंगे, पसीने में गर्क होंगे, उस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साए के अलावा। और उस दिन के आदमी सोचे, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा मोमिनीन को, अल्लाह पाक हमारा आपका उनमें हशर फरमा दे। जन्नत की खुशबू 40 साल दूर की मसाफत से आने लगती है, और जन्नत के दरवाजे इतने बड़े बड़े कि एक दरवाज़ा खोला जाए तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का फासला 40 साल का, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का तो यानी 70 साल का, और एक दरवाजे के दो पट उनका दरमियान का फासला 40 साल का। एक ज़माना आएगा मोमिनीन मोमिनात, उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे, और वो जन्नत में उनको कहा जाएगा दाखिल हो जाओ, हमेशा हमेशा खुश रहो, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हमेशा सदा जवान, जितना उछल कूद, जितना जितना ऐश आराम तफरी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर ना कोई नमाज पढ़ने को कहेगा, यहाँ पर ना कोई रोज़ा रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर ना हज को जाने को कहा जाएगा। तुम्हारा टेस्ट पूरा हो गया, इम्तहान इम्तहान देकर आ गए, अब यहाँ खेलो कूदो। हमारा मसला यह है इंसानियत का कि हमने दुनिया को खेल कूद की जगह समझ लिया। अब खेल कूद थोड़ा सा ख़राब होता है तो परेशान हो जाते हैं, अरे ये नहीं मिल रहा। यहाँ काम के वास्ते आए थे, और वहाँ पर जाकर आराम करना था, वहाँ जाकर खेल कूद करना था। अल्लाह पाक हमें अमल तौफीक दे दे। जो चीज़ ले जाने की है वो अमल सालेह, नेक अमल। जन्नत के दोनों तरफ लिखा हुआ होगा सुनहरी अल्फाज में, गोल्डन वर्ड, एक बैनर लगा होता है जैसे दुनिया में हाईवे पर, वहाँ बैनर लगा हुआ होगा कि जो हमने आगे भेजा था पा लिया, जो जिक्र तिलावत की, सदक़ात किए, नेक अमल किए, फ़राइज़ अदा किए, यहाँ पर सबका सवाब देखो, दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पर महलात लगे हुए हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही हैं, जो आगे भेजा था पा लिया, और जो हम छोड़ कर आए थे वो हमसे खो गया, जो हमसे खो गया। तो अगर जन्नत में दाखिल होने के बाद भी कोई चीज़ का अफसोस होगा तो इस चीज़ का अफसोस होगा कि अरे दुनिया में फलां वक्त हमने अल्लाह की याद के बगैर गुजार दी। और कोई अफसोस नहीं होगा, घर बार, मकान, गाड़ी, कारोबार, फैक्ट्री, किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा। वो उस मिनट का, उस टाइम का अफसोस होगा जो बगैर जिक्र के गुजर गया। इतनी बड़ी चीज़ है, कुरान पाक में फरमाया वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। ज़मीन आसमान का निज़ाम चल रहा है अल्लाह के जिक्र से। एक ज़माना आएगा कि आखिरी आदमी जो अल्लाह को याद करता था वो ज़मीन में से चला जाएगा। ये सारे ज़मीन आसमान और बड़े बड़े तैयारे और बड़े बड़े इमारतें और पुल और ब्रिज और दरिया और पहाड़, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे लपेट कर ऐसे फेंक दिए जाएंगे जैसे कि हम गार्बेज में कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो भाई टेस्ट पूरा हो गया, लोग चले गए अच्छे लोग, मामला खत्म, इम्तहान गा कि ये कुर्सी टेबल सारे लपेटो और इसको गार्बेज में फेंक दो। तो जिन चीजों में आदमी अपनी अकल को लगाए हुए है, जिन चीजों से खुश रहता है, वो सोचे कि आखिर में इनका क्या अंजाम होगा, ये तो कूड़ेदान में फेंकने वाली चीज। अल्लाह पाक नेमतों की तौफीक दे दे। हदीस शरीफ में आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहतु वल फराग। दो चीजें, दो नेमतें ऐसे हैं उसके बारे में लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं अक्सर लोग, यानी इनसे फायदा नहीं उठाते। एक तो अच्छी सेहत मिली हुई है और दूसरे फारिग वक्त मिला हुआ, सेहत और वक्त। और समझते हैं कि ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। फिर बीमारी आ गई तो अब कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त मालूम भी होगा, इल्म भी होगा, शौक भी होगा, तड़प भी होगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो सेहत ही नहीं रही। और इसी तरह वक्त है, एक ज़माना आएगा वक्त नहीं रहेगा, आदमी मसरूफ हो गया, परेशान है, तो वक्त भी चला गया। तो ये चीज़ें अर्ज की जाती हैं कि हम वक्त से पहले अपनी आखिरत की तिजारत में उसमें कामयाब हो जाएं। अल्लाह पाक हमें, आपको, सबको दीन की मेहनत करने और उसमें दौड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो वक्त आपने सीखने के लिए फारिग किया, अल्लाह पाक बेहतरीन बदला अता फरमाए। आदमी नियतों से शुरू करे, एक आदमी नियत कर ले कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँगा, थोड़ी कोशिश करे, चंद सूरतें याद कर ले, आखिरत में हाफिज उठाया जाएगा। इसलिए देखा गया कि बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग चलते फिरते बच्चों की तरह कुरान पाक याद कर रहे हैं, यानी तजवीद, तफसीर, मानी, दावत, वो तो दूसरी बात है, वो बच्चों की तरह कुरान शरीफ का रट्टा लगा रहे हैं, एक सूरह, दूसरी सूरह, तीसरी सूरह खोल के पढ़ रहे हैं, जैसे 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही 70 साल के, यानी बड़ी उम्र के लोग भी, कि हमें याद हो जाए किसी तरीके से, और उसके शौक में लगे रहते। जो आदमी मुसलमान भाई की मदद के लिए चले, उसको 10 साल के इतकाफ का सवाब मिलता है। जो आदमी दीन सीखने को जाए, अल्लाह की मखलूक उसके लिए दुआएं करती है, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। जो आदमी सोते वक्त तहज्जुद में उठने की नियत कर ले और नहीं भी उठ सका, तो तहज्जुद पढ़ने का इनाम मिलेगा और सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक हदिया, गिफ्ट हो गया। तो नियत ऐसी बड़ी चीज़ है कि हर काम में ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी नियत करे आदमी। नियत ऐसी चीज़ है, आदमी चांद पर पहुंच गया और आगे निकल गया, निज़ाम शमसी से वापस भी आ गया और करोड़ों अरबों का सवाब भी ले आया और बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर ही। नियत ऐसी चीज़ है, तो नियत को सोचना और दिल को खालिस करना है। दिल खालिस वक्त होगा जब किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल ना हो, फला ऐसा है, वो वैसा है, किसी और के बारे में सब अच्छे हैं, सबके बारे में ख्याल पाकीज़ा, दिल बिल्कुल साफ मुतमईन, जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तरफ से रूहानियत आ रही है, नेक बातें दिल में आ रही हैं, अपने दिल को साफ करके बैठे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 80 साल की उम्र पाई और 50-60 साल दीन की मेहनत की। उनकी किताबें हैं हिंदुस्तान में, घर घर में मौजूद होती हैं, बहिश्ती जेवर माशाल्लाह। हजरत ने अपने एक खुलासे के तौर पर हर मुसलमान रात दिन किस तरह रहे, कुछ हिदायत इरशाद फरमाई, वो पढ़ी जाएंगी। उनमें से हर एक हिदायत के पीछे कुरान शरीफ की आयात और अहादीस और मलफूजात और क्या क्या नहीं होंगे। हजरत ने अपनी ज़िंदगी में 1,000 से ऊपर किताबें लिखी हैं। अगर वो किताबें आप पढ़ना चाहें तो आपको एक और 20-30 साल चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए कि उनकी किताबें पढ़ सकें। लेकिन उनका खुलासा और एक चीज़ उन्होंने लिखा, हर मुसलमान को रात दिन इस तरह रहना चाहिए। फरमाया कि ज़रूरत के मुताबिक दीन का इल्म हासिल करे, खा किताब से पढ़कर या आलिमों से पूछ पूछ कर। फिर फरमाया सब गुनाहों से बचे, अगर कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करे, किसी का हक ना दबाए, किसी को जबान या हाथ से तकलीफ ना दे, किसी की बुराई ना करे, माल की मोहब्बत और नाम और नमूद की ख्वाहिश ना रखे, ना बहुत अच्छे खाने कपड़े की फिक्र में रहे। अगर कोई आदमी उसकी खता और गलती पर टोके तो अपनी बात ना बनाए, फौरन इकरार और तौबा कर ले, किसी ने आके समझाया तो फौरन मान ले, हाँ भाई जज़ाकअल्लाह आपने मेरी गलती बताई, फौरन ठीक कर ले अपने आप को, उसका मुकाबला करने की कोशिश ना करे कि मियाँ तुम गलत बताए, ठीक नहीं बताए। حضرت نے فرمایا کہ بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے ہر وقت، یعنی ادھر ادھر لمبے لمبے سفر پر جانا، سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی جب بھی بہت ضروری ہو تو جائے کہیں ورنہ واپس آ جائے اپنے مقام پر، نہ بہت زیادہ ہنسے نہ بہت زیادہ بولے، خاص کر نامحرموں سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے، اس سے کیا ہوگا، دل خراب ہو جائے گا، اب دل خراب ہو گیا تو نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ ذکر ہو رہا ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے، اب دل خراب ہو گیا، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے، شریعت اور اسلام کا ہر وقت خیال رکھے، اور عبادت میں سستی نہ کرے، یعنی کسی کی ایک نماز چھوٹ جائے تو ایسا سوچے کہ میرا گھر بار اور سارا بزنس اور جتنا مال تھا سب لوٹ لیا گیا، اس کے برابر اس کا نقصان، عبادت میں سستی نہ کرے، زیادہ وقت تنہائی میں رہے، اگر لوگوں سے ملنا جلنا ہو تو سب سے عاجز ہمبل تواضع سے رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتائے، اور بڑے امیروں سے بہت کم ملے، اور بددین آدمی سے دور بھاگے، جو آدمی اس میں دین نہیں ہے اس سے دور بھاگے، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کو درست کیا کرے، اللہ کے پیارے بندے اور تقویٰ والے اور اصلاح والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنی خامیوں کی لسٹ بناتے رہتے ہیں، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، اور اس کو پھر اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو بتاتے ہیں، ان سے اصلاح کراتے ہیں، ارے میرے اندر یہ خرابی آ گئی، کیسے ٹھیک کروں، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستگی کیا کرے، نماز کو اچھی طرح اچھے وقت پر پابندی سے ادا کرنے کا بہت خیال رکھے، دل اور زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کسی وقت غافل نہ ہو، اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ کا شکر بجا لائے، الحمدللہ، کیونکہ دن رات اللہ پاک کی طرف سے بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اچھی اچھی چیزیں ملتی رہتی ہیں، ان کو نعمتیں، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے یا بندی کو ذکر کی توفیق دے دے، یہ سب سے بڑا صدقہ، بات چیت نرمی سے کرے، نرمی سے کرے بات چیت، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی سے اس کو کرے، دنیا میں جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی چیز حاصل کی ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا میں، چاہے دعوت، خدمت، عبادت، تعلیم، یا کوئی بزنس، یا کوئی چیز، مکان، فیکٹری، کسی آدمی نے دین یا دنیا میں اگر کوئی چیز حاصل کیا ہے سینچریز میں، تو وہ ایک شیڈول بنا کے اپنے کام کو کرنے سے حاصل کی، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کچھ دل چاہا تو یہ بھی کر لیا، اگلے دن نہیں دل چاہا تو بیٹھ کے پڑے، ایک شیڈول بنا کے پوری زندگی کا اس کو اس طرح نبھانا ہے، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کیجیے، کیونکہ وقت اصل آدمی کا سرمایہ ہے، باقی چیزیں کھانا پینا، سونا چاندی، مکان دکان، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، صحت، غم، خوشی، دنیا کی نعمتیں کاؤنٹ کرو، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو کم دیے، وقت سب کو برابر دیا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، بادشاہ کو بھی 24 گھنٹے دیے، فقیر کو بھی 24 گھنٹے دیے، کر لو جتنا کرنا ہے، ایک آدمی بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگا فرض کیجئے کہ آپ کا آخری دن ہو یہ، تو آپ اپنے معمول میں کیا چیز بدل کے آج سب سے زیادہ کون سا کام کریں گے، کہ آپ کا اب آخری دن ہے، فرض کیجئے، تو مختلف لوگوں نے کچھ بتایا، مختلف لوگوں نے کچھ بتایا کہ جب میرا آخری دن ہوگا تو میں ایسا 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 شیڈول بنا کے یہ کام کروں گا کہ اللہ خوش ہو جائے، ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو جو کرتا ہوں روز ویسے ہی کروں گا، کیونکہ میرے شیڈول میں اتنا میکسیمائز کیا ہے، آپٹیمائز، اتنا بہترین بنایا ہے کہ ہر دن میں آخری دن سمجھتا ہوں، اور اس سے زیادہ اس کو اچھا کرنے کی اب گنجائش نہیں، تو جس دن فرشتہ آ گیا ویسے ہی چلا جاؤں، بالکل اطمینان سے اپنا روزانہ کے کام میں لگے، اللہ جو کچھ رنج اور نقصان پیش آئے اللہ کی طرف سے سمجھے، پریشان نہ ہو، یوں سمجھے اس میں مجھ کو ثواب ملے گا، میں اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکا، اللہ نے کوئی چیز، کوئی امتحان بھیجا، اس کے ذریعے سے مجھے ثواب مل جائے گا، دوسری طرف سے میں محنت نہیں کیا، ادھر سے مجھے آٹومیٹک ثواب مل گیا، کوئی مشکل پیش آئی تو اس پر اللہ کی طرف سے سمجھے کہ مجھے ثواب ملے گا، جیسے بیماری کو، بیمار کو صحت کے زمانے میں کیے ہوئے سارے اعمال کا ثواب مل گیا، ہر وقت دنیا کا حساب کتاب اپنے دل میں، اور دنیا کے کاموں کا ذکر نہ رکھے بلکہ خیال اللہ کا رکھے، ایک صاحب نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے تو وہ ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کرتے تھے، چار دکانیں تھیں، एक दिन उन्होंने इमाम साहब को कहा कि आपने आज 3 रिकत पढ़ाई। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मैं हर रिकत में एक दुकान का हिसाब करता था, एक दुकान का हिसाब रह गया, तो आपने आज 3 ही रिकत पढ़ाई। हर वक्त दुनिया, एक आदमी है जो बेचारा, यानी पेशा कारोबार बुरा नहीं है, हलाल रिस्क कमाना वो भी इबादत है। हजरत ने फरमाया, एक बुजुर्ग ने, कि एक आदमी है बेचारा ठेले लगा के फ्रूट बेच रहा है, केला फिर सेब, और उसकी आमदनी का यही जरिया है मस्जिद के बाहर या कहीं गली में, और वो लोग आ गए, भाई ये दो 1 किलो आधा किलो, कोई मांग रहा है, कोई थैली ले रहा है, कोई पैसे रख रहा है, वो बेचारा उसमें मशगूल है। इतने में नमाज का वक्त आ गया, अजान हुई, अब उसका दिल अटका हुआ है मस्जिद में, उसका दिल अटका हुआ है मस्जिद में, और बाहर लोगों से लेन देन कर रहा है और चाहता है कि जल्दी खत्म हो तो मैं जाऊं किसी तरह। अब इतने में बिल्कुल इकामत का वक्त आ गया और नमाज का वक्त, और लोगों की भीड़ है, तो उसने किसी तरीके से सब ग्राहकों को फारिग किया अपना, और कोई उसका देखने वाला नहीं, बेचारे का ठेला एक कोने में जल्दी से लगा दिया अल्लाह के वास्ते, चलो कोई नहीं ले जाएगा, भागा और मस्जिद की तरफ जाके जल्दी जल्दी वजू किया, भाग के जल्दी जल्दी, और जो है उसके यानी कपड़े भी इतने बहुत खूबसूरत नहीं, जल्दी से जाकर वो नमाज में खड़ा हो गया। हालांकि उसका ध्यान जो है कभी इधर भी है कि भाई कहीं कोई नुकसान ना हो जाए ना हो जाए, लेकिन चूंकि रिस्क हलाल कमा रहा है और उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ था और चाहता था कि मैं नमाज को आऊं, तो अब थोड़ी बहुत जहन में परेशानी भी है, उसको सवाब मिलेगा, उसको सवाब मिलेगा उसकी, यानी ये जो बात है उसके बारे में नहीं कही जा रही, उसको तो बल्कि खुशू-खुदू का सवाब मिलेगा। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हर वक्त जो है वो, यानी मस्जिद में भी आ गए तो अब बाहर की दुनिया में दिल अटका हुआ है कि कब नमाज खत्म हो तो मैं जाऊं अपना काम करूं। एक बुजुर्ग ने देखा कि एक साहब ने सलाम फेरा और भाग के जाने लगे, सलाम फेरा, उठे और भागे, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया कि भाई तुम क्या चाहते हो, कोई दुआ वगैरह करके जाओ, कोई तुमको कोई हाजत नहीं अल्लाह से मांगने की। वो कहता है मैंने लकड़ियां काट ली हैं और जंगल में बांध कर रखी हैं और बस जाना है और बेच के आना है, उस फिक्र में लगा हुआ है, बस भागूं किसी तरह। उन्होंने कहा भाई तुम बैठ जाओ, और तुमको अगर कोई और चीज़ नहीं मांगनी है अल्लाह से तो ये मांगो कि अल्लाह मैं कब तक ये जंगल में जा जा के आऊँगा, मेरा कोई और अच्छा सा इंतज़ाम कर दीजिए, कोई दुआ मांग के जाओ अल्लाह से, नमाज में आए फिर भागना नहीं। हर वक्त दिल में दुनिया का हिसाब किताब और जिक्र मस्कूर ना रखे, ख्याल भी अल्लाह का रखे। आगे फरमाया जहां तक हो सके दूसरों को फायदा पहुंचाए, खा दुनिया का फायदा पहुंचाए या दीन का पहुंचाए, खिदमत खल्क, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है, फराइज के बाद खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है। खाने पीने में इतनी कमी ना करे कि कमजोर या बीमार हो जाए, ना इतनी ज्यादती करे कि इबादत में सुस्ती होने लगे, खाने पीने में ना बहुत कमी करे ना बहुत ज्यादती करे, अल्लाह के सवा किसी से कुछ दिल में उम्मीद और तमा और लालच न हो, न किसी तरफ ख्याल दौड़ाए कि फलां जगह से हमको ये फायदा हो जाए, किसी की तरफ कोई ख्याल ना हो। कोई चीज़ दुनिया का काम भी किसी से अटका है, किसी से मांगना है, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहले अल्लाह से मांगो दिल में, अल्लाह मेरा ये काम कर दीजिए, फिर जो सबब के तौर पर आदमी है या कोई बिजनेस है कहीं है वहां जाके दरख्वास्त डालनी है, अब जाके डालो, पहले अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला की तलाश में बेचैन रहे कि अल्लाह से हमको ताल्लुक हो जाए, हम अल्लाह के दोस्त हो जाए। नियामत थोड़ी हो या बहुत ज्यादा, उस पर शुक्र बजा लाए, और कभी कोई तंगी फाका आ गया तो उससे तंग परेशान ना हो। जो आदमी उनके मातहत हैं, यानी घर में जो छोटे हैं, उनकी खता और गलती से दरगुजर करे, अपने छोटों को माफ कर दे, किसी का आयब मालूम हो जाए, गलती मालूम हो जाए तो उसको छुपा ले। अलबत्ता अगर एक आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपको मालूम हो जाए तो आप उस शख्स को कह दीजिए कि यह फला आदमी तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेहमानों, मुसाफिरों, गरीबों, आलिमों, दरवेशों की खिदमत करे, नेक सोहबत इख्तियार करे, हर वक्त अल्लाह से डरा करे, मौत को याद रखे, मौत को याद रखे। आगे फरमाया किसी वक्त बैठ कर रोजाना अपने दिन भर के कामों को सोचा करे, ये आदमी का इस्लाह नफ्स का बहुत बड़ा जरिया है। सुबह उठ के अल्लाह से आदमी वादा कर ले, या अल्लाह आज मैं नेक काम करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा, फिर दुआ करे कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे होगा नहीं, दुनिया के बखेड़े और इतने फितन और परेशानियां और चीज़ें, मैं कहा मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे होगा नहीं, तो अल्लाह आप ही मेरी मदद फरमाइए, ऐसे मांग के रो धो के निकला आप घर से। अब उसके दिल में एक मीटर लगा हुआ है, उसको कहते हैं तकवा का मीटर, कोई भी चीज़ पेश आई वो अंदर से कहेगा मियाँ ये ठीक है कि नहीं, तुम सुबह वादा करके आए थे, ठीक है कि नहीं? तो उसको बार बार वो बार बार रुकेगा, वो कोई चीज़ को ऐसे दिलेरी से नहीं करेगा, बार बार रुकेगा। एक सुबह एक वादा करके आया था, भाई ये देखो गलत हो गई है, गलत जगह नजर पड़ गई है, गलत खा लिया, गलत बोल लिया, गलत सुन लिया, अरे क्या हो रहा है। आदमी थोड़ा सा अपना उसका दिल उसको मलामत करेगा, और शाम को आके सोचा करे कि भाई कोई नेकी की आज, नेकी की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, गलती की अरे बहुत सारी गलतियां हो गई, एक एक को सोच के इस्तिगफार करे, अपना हिसाब ले, कबल इसके के हिसाब लिया जाए आखरत में या कब्र में। आदमी रोजाना अपना हिसाब ले, अपना वजन करे, बिया कहाँ हो, अपना वजन करे। एक साहब ने अपने घर में एक जगह बना रखी थी, अपने किसी कोई ऐसी शक्ल की, कब्र की शक्ल की कोई जगह फर्श पे, तो उसमें रात को जाकर वो बैठ जाते या लेट जाते, और फिर अपने नफ्स को कहते देखो कब्र में आ गए हो, हिसाब किताब होने वाला है, तुम्हारा क्या बनेगा, अभी तुम्हें अभी हिसाब होगा, बताओ कहाँ क्या करोगे। अपने नफ्स को समझाते 5-10 मिनट, फिर उसके बाद कहते कि भाई अब यहाँ से निकलने की कोई खुलासी है, भाई एक मौका और मिल जाए बस अब ठीक करूँगा काम। फिर उसके बाद निकल आते कि हम यहाँ अभी तो मौका है, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। अपने आप को समझाते कभी कभी, कब्रिस्तान जाना ये भी इबरत की याद दिलाते कि भाई वो भी हमारे जैसे थे, बड़े बड़े पहलवान और बादशाह और बड़े बड़े बिजनेसमैन, और क्या नहीं था उनके पास, वो दुनिया में आकर अब यहाँ पर जाते। इसी वक्त रोज बैठकर दिन भर के कामों को सोचा कीजिए, नेकी याद आए शुक्र कीजिए, गुनाह हो तौबा कीजिए, झूठ हरगिज ना बोलिए। जो महफिल और गैदरिंग जहाँ पर कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो वहाँ हरगिज ना जाए, आदमी का दिल खराब हो जाएगा, ना कानों की हिफाजत, ना आँख की हिफाजत, ना मुंह की हिफाजत, क्या बोलकर क्या सुनकर आ गए, सारे दिन की जो है नमाज नूर सारे जो है उसका नूर जाता रहा। जो महफिल ऐसी जगह हो जहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कोई काम हो रहा हो वहाँ हरगिज ना जाए, शर्म व हया और बुर्दबारी से रहे, और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि नेक रास्ते पर कायम रखें। हजरत ने ये सारी बातें गिनवाई, 39, और 40वीं बात और 39 आखिरी बात ये बताई कि ये सब बातें आपके अंदर आ गई अगर अमल करने से, तो अब ये कीजिए कि इन सब बातों पर मगरूर ना होइए कि आपके अंदर इतनी खूबियां हैं, वे शैतान के दो दाव हैं, एक तो पहले आपको अमल नहीं करने देगा, सुस्त हो जाए, काहिल हो जाए, अमल ना करे, अब बताया ये अमल कीजिए, 30-35 उन 39 बातें बता दी, तो अब शैतान दूसरे रास्ते से आएगा कि आप बुजुर्ग हो गए, अल्लाह के वली हो गए, बहुत ऊंचे पहुंच गए, तो अब कह रहे हैं इन बातों पे मगरूर नहीं होना कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं। नेकी कर दरिया में डाल, कोई जानता ना हो कोई मानता ना हो, अल्लाह ताला खुश हो जाए तो सारे काम बन जाएंगे। कुछ जिक्र और इस्कार की बातें, रहमतों वाले आमाल, अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा। अली रदी अल्लाह अनु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोज़ाना 100 मरतबा यानी एक तस्बीह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ये कलमात उसके लिए फ़क्र व फ़ाक़े से हिफाजत का जरिया और कब्र की वहशत में उनसियत का बाइस होंगी, और इनको पढ़ने वाला ज़ाहरी और बातिनी गिना यानी कंटेंटमेंट हासिल हासिल कर लेगा, क़यामत के दिन उन कलिमात की बरकत से जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। यानी एक तस्बीह पढ़ने से माश की तंगी दूर होना, कब्र की वहशत दूर होना, और ज़ाहरी और बातिनी गिना इत्मीनान सुकून आसान रिस्क अता होना, जन्नत के दरवाजे को खटखटाना और जन्नत में दाखिल होने की सआदत मिलना, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ये कलिमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जाली पर गोल्डन उसमें कैलीग्राफी में लिखे हुए हैं, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा लिखे हुए, 26 टाइम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन मुझ पर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ ऐसा नूर होगा कि अगर सारी मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो उन सब के लिए काफ़ी हो जाए, सब के लिए काफ़ी हो जाए। सुबह और शाम की तस्बीहात और अज़कार उनका मुज़ाकरा किया जाता है कि हमें याद आ जाए, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूब इलैह, ये 3-3 मरतबा सुबह और शाम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ना चाहिए। لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. یہ 10 مرتبہ فجر کے بعد اور 10 مرتبہ عصر کے بعد پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. یہ حدیث شریف میں آیا کہ جو 3 مرتبہ پڑھ لے اس کو اس دن کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. آدمی پریشان ہے, خبریں دیکھ رہا ہے, اخبار پڑھ رہا ہے, لوگوں سے پوچھ رہا ہے, گارڈ رکھے ہوئے ہیں, چوکی دار رکھے ہوئے ہیں اور باہر بنا کر جگہ چبوترے اس پہ کتے رکھے ہوئے ہیں, پریشان ہے حفاظت کے لیے, بھائی کیا کروں, باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, یہ دعائیں بھی اس کو استعمال کرنی ہے. سب سے بڑا سبب جو ہے دنیا میں وہ دعائیں ہیں. ہم دوسرے اسباب کو دیکھتے ہیں, مٹیریل مادی چیزوں کو, لیکن جو اصل سبب بتایا گیا اس کی طرف توجہ نہیں ہے, وہ بھی دیکھنا چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آیت الکرسی پڑھیے, سورہ البقرہ کی آخر کی دو آیات جو پڑھیں تو شیطان اس گھر سے چلا جاتا, اور سورہ آل عمران کی آخر کی آیات جو پڑھیں تو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب ایک رکوع ہے, سوتے وقت اس کو کھول کر پڑھ لیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہاں سے لے کے اس سورہ کے ختم تک, سورہ آل عمران کا آخری دو صفحے, پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ہم جیسے کمزوروں اور مشغول لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے, بتا کر چلے گئے بھائی ایسے اعمال, آدمی لسٹ بنا لے اس کو اور ان نیکیوں کو پھیلایا کرے, دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کرے کہ آپ پڑھ لیجئے. سوتے وقت تسبیح فاطمی پڑھ لیجئے 33 مرتبہ, سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ, اللہ اکبر, تو اللہ پاک تھکن دور فرما دیں گے, دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی, برکت مل جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے. اللہ, درود شریف کی کثرت کی جائے, اور جمعے کی رات اور جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف کی کثرت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اسماء الحسنی ہیں, ان میں بڑی برکتیں ہیں. سورہ آراف میں فرمایا وللہ الاسماء الحسنی فدعوه بها, اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں, ان کو ان ناموں سے پکارو. دوسری آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنی, اللہ کے نام کے ساتھ پکارو یا رحمان کے نام کے ساتھ پکارو, جس نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سب سے بڑے نام اللہ کو ذکر کیا, اور مخلوق کو ہدایت کی کہ اللہ کہہ کر, رحمان کہہ کر, یا دوسرے اسماء الحسنی میں جو نام مبارک ہیں ان سے پکارا جائے. تو دعا کرنی ہو یا رحیم, یا کریم, یا سلام, یا سلام, یا لطیف, یا صمد, یا حی, یا قیوم, یا ارحم الراحمین, اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا. اسماء حسنی کی برکت سے دعا مانگنا سنت بھی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اے اللہ میں ہر اس مبارک نام کے ساتھ آپ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنی مقدس ذات کے لیے رکھا ہے, یا اس نام مبارک کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے, تو میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں. اس کو, اس دعا کو عربی میں امام کعبہ بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ بدر کے دن قتال میں مصروف تھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ رہے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اس طرح اور بھی حدیث میں اسم اعظم کے بارے میں تفاصیل بتائی گئیں, اور محدثین اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں اسماء حسنی بہت بڑی چیز. جس نے اللہ کے اسماء حسنی یاد کیے تو اس کو جنت میں داخلہ یا اعلیٰ مرتبے نصیب ہوں گے, اور جس کو نے دعا کے وقت اسماء حسنی پڑھے, جس نے اللہ کے پیارے ناموں کا ایک ایک نام بطور اخلاص تبرک کے طور پر پڑھے, اور جو ان ناموں کے علمی حیثیت کو سمجھ کر ان پر ایمان لایا, उसमें बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात लिखे उलमा ने कि अल्लाह के प्यारे नामों से दुआ की जाए, उससे जिन्नात के असर और डर से हिफाजत होगी, बुरे और डरावने ख्वाब दूर होंगे, नुकसान पहुंचाने वालों के नुकसान से महफूज रहता है, दुश्मनियां ख़त्म हो जाती हैं, दिल में नूर आने की बरकत से गुनाहों से नफरत होने लगती है, गुनाह छूटते जाते हैं बिफ़ज़लिल्लाह तआला, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलते हैं, परेशानियों से महफूज रहता है, अल्लाह के गैर से बेखौफ हो जाता है, दुश्मन से हिफाजत होती है। सुभानअल्लाह। अल्लाह के नाम में ताकत है, कुव्वत है, राहत है, सुकून है, शिफा है, बीमारी और तकलीफ़ों का दूर होना है, आपस का जोड़ है, मोहब्बत और प्यार है, और दुनिया और आखरत का संवर जाना है। अल्लाह ताला हमें सुबह शाम अल्लाह की बड़ाई बयान करने, अल्लाह को पुकारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक मिनट का मदरसा एक किताब है जो कम फुर्सत वाले लोगों को पढ़नी चाहिए। हज़रत शाह अफज़ालुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा है एक मिनट का मदरसा। इसमें रोज़ाना घर में पढ़ने के लिए तालीम के वास्ते एक पेज रात को सोते वक्त अपने अहले खाना को घर वालों को जमा किया और उनको एक मिनट का मदरसा सुनाया। उसमें कुछ नमाज के अल्फाज के मानी, कुछ सुन्नतें, कुछ गुनाह छोड़ने की बात और कुछ नेकी के फ़ायदे, इस तरह का एक पेज। तो बरकत के लिए यहाँ पढ़ा जाता है कि नमाज में सना में हम पढ़ते हैं सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारकस्मुक व तबारकस्मुक, और अल्लाह आपका नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुक, और आपकी शान बहुत बुलंद है, व ला इलाहा गैरुक, और आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बड़े बड़े गुनाह जो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते और एक गुनाह भी ऊपर से नीचे गिरा देने यानी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है मगर अल्लाह ताला जिस पर फजल फरमाए। बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? मसलन बदगुमानी करना, यानी बगैर किसी दलील से महज अंदाजे से और हालात से किसी आदमी को बुरा समझना, ये बड़ा गुनहगार है, इसने ये काम किया है, कोई दलील नहीं है, दिल में ख्याल कर लिया, बदगुमानी। बदगुमानी पे अल्लाह ताला क़यामत में मुकदमा कायम फरमा सकते हैं, तुमने हमारे बंदे या बंदी के बारे में ऐसा सोचा, क्यों सोचा। और खुशगुमानी, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बरदस्त हैं, फरिश्तों जैसे हैं, खुशगुमानी पे इनाम मिलेगा और ये मेरे बंदे के बारे में अच्छा सोचता है। उनका जो असल मामला है वो अल्लाह के हवाले, हमें बदगुमानी की इजाज़त नहीं है। बदगुमानी करना कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है। किसी का आयब तलाश करना, तलाश में रहना कि उसकी कोई गलती मालूम हो जाए, बड़े बड़े गुनाह। किसी की गीबत करना, यानी कि उसके पीछे पीठ पीछे उसको बुराई से याद करना, जिसको वो अगर सुने तो नागवार हो। गुनाहों के नुकसान जो दुनिया में पेश आते हैं क्या हैं? गुनहगार को आदमियों से वहशत होने लगती है, ख़ास तौर से नेक लोगों से वहशत होने लगती है। अक्सर कामों में दुश्वारी पेश आती है, हर जगह अटक गया, गाड़ी ख़राब हो गई, बिजनेस ख़राब हो गया, चीज़ ख़राब हो गई, अक्सर काम उसके अटक गए, कहीं हो नहीं पा रहा कुछ, क्या हुआ, कहीं कोई गलती हो गई, गुनाह हो गया। दिल में एक जुल्मत पैदा हो जाती है, दिल में एक तारीकी और अंधेरा पैदा हो जाता है, उसकी नहुसत से आदमी बिदअत और गुमराही और जहालत में मुबतला होकर हलाक हो जाता है, अल्लाह ताला महफूज रखे। उसके मुकाबले में नेकी करने से क्या फ़ायदा होता है जो दुनिया में मिलता है? तमाम मकासिद में आसानी होती है, नेकी की बरकत से ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो जाती है, बारिशें होती हैं, माल बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, औलाद होती है, बागात फलते हैं, नहरों का पानी ज़्यादा हो जाता है। दुनिया में नेकी के ये फ़ायदे, आखिरत में तो फ़ायदा मिलेगा ही, दुनिया में नेकी के फ़ायदे, आदमी का दिल भी अच्छा, गहल महल्ला मकान और आस पास और सारी इकोनॉमी भी अच्छी और कोई मसले मसाइल नहीं, नेकी की बरकत से। अल्लाह ताला हमें बरकतों की तौफीक दे। ज़बान की हिफाजत के बारे में एक मज़मून पढ़ा जाएगा, ये बहिश्ती ज़ेवर की मसाइल की किताब है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, और उन्होंने उसमें एक मज़मून लिखा है आखिर में कि बाज़ लोग होते हैं कभी उन्होंने कसम खा ली, ज़बान से कसम खा ली, अब उसका उसके अहकाम मालूम करने चाहिए कि भाई ये क्या हुआ, अब उसको क्या करना है। हज़रत ने लिखा कि बिला ज़रूरत बात बात पर कसम खाना बुरी बात है, सच्ची बात भर भी कसम ना खाना चाहिए। आज अल्लाह के नेक बंदे वैसे होते हैं कि उनको अगर अदालत में ही बुला लिया जाए कोर्ट में और भाई कसम खा दो, कहते हैं मैं कसम नहीं खाता, ये चीज़ उसी को दे दो, मुकदमा ख़त्म कर, नहीं खाता। हालांकि हो सकता है उन्हीं की चीज़ हो, लेकिन ऐसी चीज़ है कसम कि ये लफ्ज़ ज़बान पे लाए ही क्यों आदमी। अब उसका मसला है कि जिसने अल्लाह की कसम खाई और कहा कि अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत जलाल की कसम, बुजुर्गी बड़ाई की कसम, तो कसम हो गई। अब उसके खिलाफ करना दुरुस्त नहीं। अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कह दिया कि हम कसम खाते हैं कि फला काम नहीं करेंगे, तो भी कसम हो गई। अगर किसी ने कहा कि खुदा गवाह है, खुदा गवाह करके कहता हूँ, हाजिर नाजिर कर जान कर कहता हूँ, तब भी कसम हो गई। और कुरान की कसम, कलामुल्लाह की कसम, कलाम मजीद की कसम खाकर कोई बात कही तो भी कसम हो गई। तो इस तरह यानी बाज़ लोगों को बाज़ दफ़ा आदत हो जाती है या गुस्से में या कोई ऐसी चीज़ में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, बाद में फिर परेशान होते हैं शर्मिंदा के, अरे मैं क्या कह दिया। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसी बात पर कसम खा ली जो अभी नहीं हुई बल्कि आइंदा होगी, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, अब किसी ने कहा कि खुदा की कसम आज पानी बरसेगा और खुदा की कसम आज मेरा भाई आएगा, मिसाल के तौर पे कहा, फिर वो नहीं आया और पानी नहीं बरसा, तो वो कसम का कफारा देना पड़ेगा। ऐसी बात जबान पे लाए क्यों? फिर आगे हजरत ने उसका कफारे का बयान किया कि किसी ने कसम तोड़ डाली तो कफारा ये है कि 10 मोहताजों को 2 वक्त खाना खिला दे या उसको अनाज सदका फितर के बराबर, 10 मोहताजों को अनाज दे दिया 2 वक्त का खाना, या उनको अच्छा अनाज उसके बराबर दे दिया, या 10 फकीरों को कपड़ा पहना दिया यानी उनको कपड़ा जोड़ा दे दिया, हर फकीर को इतना कपड़ा दे दिया जिससे बदन का ज़्यादा हिस्सा ढक जाए, जैसे चादर या बड़ा लंबा कुर्ता दे दिया, तो कफ़ारा हो गया। लेकिन कपड़ा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी गरीब औरत को कपड़ा दिया गया तो ऐसा बड़ा कपड़ा हो सारा बदन उसका ढक सके और उससे नमाज पढ़ सके, उससे कम होगा तो कफ़ारा अदा नहीं होगा। इस तरह के अहकाम और चीज़ें पढ़नी चाहिए। बाज़ दफ़ा लोगों को पेश आ जाती है, फिर उलमाए कराम मुफ्ती साहबान के पास जाना पड़ता है कि ये ऐसी बात हो गई थी, अब उससे क्या होगा। तो सबक के तौर पर तो ये है कि ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकाले, जबान संभाल कर सोच कर बात करें। बस चीज़ें ऐसी हैं कि उसको ज़बान पे लाना नहीं चाहिए, मसलन गाली, मसलन कसम बोलना ही नहीं चाहिए ज़बान से, या लानत, या कोई ऐसी चीज़ जिससे खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसी बात हो जाए, अलहदगी हो जाए खुदा न खास्ता। और किसी बात को ज़ोर देकर ऐसा मत कहिए कि बस ऐसा ही ज़रूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं, नरमी से बात। ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ एक तीर है जो सीधे किसी के दिल पर जाके लगेगा, या एक बम का गोला है जो पूरे घर और ख़ानदान को तबाह कर देगा, या कलमा एक कुफर है जो सारी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद कर देगा, सारी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद। उसके बजाय कलमात खैर व बरकत ऐसे हैं जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात, जैसे तस्बीह तिलावत जिक्र दुआ, और बेकार बातें ऐसी हैं जैसे ईंट पत्थर मट्टी उठा लिए। और अगर गीबत लगाई बुझाई झूठ झगड़ा बोहतान चुगलखोरी में लग गया आदमी, तो ऐसा है जैसे आग ले लिया। अब ज़बान वही है, आदमी वही है, लेकिन उसने हीरे जवाहरात देख के आग ले लिया, तो अब किसका खुशी। इसलिए ज़बान से अगर कोई चीज़ बोलें तो अच्छी अच्छी बातें बोलें, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, इस तरह हमारे सीखने की चीज़ है। कोई काम शुरू कीजिए तो कहिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। छींक आ गई तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। कोई काम करने का इरादा हो तो कहें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो करूँगा। किसी ने पूरी किताब लिखी, कहीं गए दुनिया के सफ़र में, दुनिया को देखा, मुसलमानों को देखा, तो किसी ने किताब लिखी गॉड विलिंग, पूरी किताब इंशाअल्लाह के ऊपर। किसी काम को करने का इरादा हो तो कहें इंशाअल्लाह। कोई अच्छी खबर सुने कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। कोई तकलीफ हुई तो कहें ए अल्लाह, या ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह। किसी की तारीफ़ करनी हो तो कहें माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। सोकर उठे तो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शुक्रिया अदा करना हो किसी का तो कहें जजाक अल्लाह, अल्लाह आपको बहुत अच्छा बदला दे। किसी को रुख्सत करना हो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में, अच्छे मूड में हो, खुशगवारी हो, फतबारक अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत वाला है। नागवारी हो, कोई मुश्किल पेश आए, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह दरकार है। कोई काम गलत हो गया, अफसोस करना है, कहें अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। किसी का इंतकाल हो गया तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अपनी हर बात में अल्लाह का उपकार को याद कर लिया, इधर उधर की बात नहीं होगी। अल्लाह ताला में ज़बान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, ज़बान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ये किताब है सुकून कल्ब, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब की, उसमें मलफूजात हैं और हज़रत ने उसमें लिखा बहुत काम की बातें। फरमाते हैं कि क्या चीज़ अल्लाह ने हलाल की है और क्या चीज़ हराम, उसका इम्तियाज करना पड़ेगा। तुम कहते हो कि हम मजबूर हैं, तुमने कैसे समझ लिया कि हम मजबूर हैं, कभी करके देखो। अच्छा नहीं बच सकते, किसी वक्त तन्हाई में अकेले में बैठ के अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ मगर ये मुआशरा मुझको मजबूर कर देता है, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कभी रो रो कर अल्लाह के सामने आजिज़ी ज़ाहिर कीजिए, यकीनन रास्ता मिलेगा। तलब सादिक पैदा करो, अल्लाह से कहो ऐ अल्लाह कोई खालिस ग़िज़ा नहीं मिलती, माहौल अच्छा नहीं मिलता, पाकिजगी का नामो निशान नहीं मिलता, अरे ये चीज़ें तुमसे क्यों छीन ली गईं, क्योंकि तुम मायूस हो गए और राज़ी हो गए और गुनाहों की ज़िंदगी से, तो इससे कभी घबरा के देखो और अल्लाह से मदद मांग के देखो, अल्लाह से मदद मांग के देखो। सारी चीज़ें सारी बातें अल्लाह के सामने पेश कर दो और आजिज़ी से कहो कि ऐ अल्लाह ये लानत ज़दा मुआशरा जिसमें मैं और अहलो अयाल और मुतालिकीन सारे आलम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब उसमें मुलव्वस हो गए, उसने मुसलमानों को जलील व ख़ार कर रखा है, ऐ अल्लाह हमको उससे नजात दिलवाइए, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमाइए, हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल फरमाइए। अल्लाह अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से मांगे। एक किताब है उसमें कुछ इबरत अंगेज़ हालात वाक़ियात दुनिया की फरेबकारी के लिखे हुए हैं, उसमें से एक मज़मून समझाया जाता है दुनिया की हकीक़त के बारे में ताकि हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें शैतान के हथकंडों से और बुरी चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया दुनिया की मिसाल, बहुत आसान मिसाल है। फरमाया कि एक आदमी जा रहा था कि एक शेर उसके पीछे भागा और अब वो आदमी दौड़ा बचने के लिए, तो उसके करीब कोई दरख्त नहीं था जिस पर कोई चढ़ जाता, तो भागते भागते उसको एक कुआं नज़र आया, कुआं यानी पानी का कुआं। उसने सोचा कि मैं कुएं में छलांग लगा देता हूँ, जब शेर चला जाएगा तो मैं कुएं से बाहर आ जाऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसने छलांग लगाने के लिए जब कुएं में देखा तो कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक सांप तैरता हुआ नज़र आया। अब पीछे शेर है और कुएं में काला नाग, अब और परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो उसने देखा कि कुएं की दीवार पर कुछ घास लगी हुई है, कुछ सब्जा कोई ऐसी शाख घास लगी हुई है। उसने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, मैं घास को पकड़ कर लटक जाता हूँ, ग्रास कोई वीड है, इसको पकड़ कर कुछ देर लटक जाता हूँ ऊँचा हो करके कि मुझे शेर ना खाए और न मैं नीचे जाऊँ कुएं में कि मुझे सांप डसे। तो दरमियान में लटक गया, कुएं में लटका हुआ है लेकिन नीचे पानी में नहीं जाता और शेर से थोड़ा सा दूर है। इस हालत में बेचारा अटका हुआ है, थोड़ी देर तक ये परेशानी रही उसको। फिर उसने देखा ऊपर के क्या हो रहा है कि एक काला और एक सफ़ेद चूहा दोनों आके उस घास को काट रहे हैं। इस चीज़ से वो लटका हुआ है, उसको दो चूहे एक सफ़ेद है और एक काला है उसको मसलसल कुतर रहे हैं कि अब थोड़ी देर में जो है ये ख़त्म होने वाला है। अब उसको और भी परेशानी हुई, बाहर भी नहीं निकल सकता नीचे भी नहीं जा सकता, लटकना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। इसी परेशानी के आलम में वो था तो उसने देखा तो उसको करीब ही शहद की मक्खियों का एक छत्ता नज़र आया जिस पर मक्खियां तो नहीं थी मगर शहद से भरा हुआ था। अब उसको उसी हाल में एक शहद का हनी एक बॉटल एक चीज़ नज़र आ गई, तो अब उसने सोचा कि ज़रा देखूँ तो सही कैसा शहद है। चुनांचा उसने एक हाथ से घास को पकड़े रखा और दूसरे हाथ की उंगली से शहद लगाकर चखा और उसको चाटने लगा, तो उसको बहुत मज़ा आया। अब ना उसको शेर याद है, ना उसको चूहा याद है कि थोड़ी देर में कुतर लेगा, ना उसको वो सांप याद है जो नीचे उसको काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और वो बैठ के शहद चाट रहा है। चंद लम्हों के लिए वो शहद चाट रहा है और उसको कुछ याद नहीं रहा। یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تمہاری مثال اس انسان کی جیسی ہے، ملک الموت شیر کی طرح پیچھے لگا ہوا ہے، قبر کا عذاب سانپ کی صورت میں انتظار میں ہے، کالا اور سفید چوہا یہ تمہارے دن کے زندگی کے دن اور رات ہے، دن اور رات، نائٹ اور ڈے، اور گھاس تمہاری زندگی ہے جس کو چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے مزے اٹھانے میں تم لگے ہوئے ہو، تمہیں کچھ یاد نہیں اور کچھ سوچ نہیں کہ تمہارا انجام آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایسی مثال، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے اور زندگی کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور چیزوں سے ڈپریشن ہوتا ہے، تو پریشانیوں کا علاج ایک مضمون پڑھا جائے گا، اس مضمون کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے اور اپنے دل پر لکھ لیجئے اور اس کو کہیں دہرائیے۔ دعوت کا بھی مضمون ہے اور اس میں ڈپریشن کا بھی علاج ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے، دنیا کے سارے اسباب اور رحمتیں اور برکتیں ان کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں، اور سارے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں، اور دنیا کی عارضی زندگی صرف امتحان ہے، اور حالات اور واقعات امتحان کے پرچے ہیں۔ زندگی کا خلاصہ اور سمری، دل کی گہرائی سے اپنی غلطیوں پر توبہ اور استغفار، اللہ کے انعامات اور احسانات پر شکر، اپنی بے بسی اور مجبوری پر صبر، اللہ کی رضا مندی اور نیک کاموں میں دوڑنا، اور مشورہ، تدبیر، استخارہ، صلاۃ الحاجت کے بعد توکل کے ساتھ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ پاک دنیا کے تمام فتنوں، حادثات، بیماریوں، دشمنیوں، پریشانیوں سے آپ کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق اور صدقات کا اہتمام کیجیے۔ استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور آئی ہوئی مصیبت کو بھی دور کرا دیتی ہے۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرے، مخلوق اس مومن سے محبت کرتی ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں خوب کوشش کرے، مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے۔ جو اللہ سے بہت ڈرے، مخلوق پر اس کا روب ڈال دیا جاتا ہے۔ جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا بس ایک سائے کی طرح ہے، شیڈو کی طرح، یہ ایک خواب ہے جس کی تکلیف آنکھ کھلنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، صبر کرنے کا بے حساب اجر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھیے، کیسے کیسے صبر کیے سال ہر سال۔ اس طرح ہمیں ایمان، یقین، دین کی بات ہوئی، ہدایت ملی، زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، ضروری علم دین ہم نے سیکھا، اور بچوں کی دینی تربیت میں لگے۔ اسی طرح آپ اپنے پاس پڑوس، رشتہ داروں اور پوری امت میں دین پھیلانے کی فکر کیجیے۔ زندگی کی ہر سانس قیمتی بنانے کے لیے اللہ والے لوگوں کی حکایات، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں پڑھنا، کسی شیخ سے رابطہ کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، عبادات، حقوق کی ادائیگی، توبہ کی اس کا تکمیل، اخلاص، سادگی، حیا، تقویٰ کا راستہ، حیات طیبہ، تزکیہ نفس، اللہ کی معرفت میں ترقی کرنا، روزانہ یہ کرنے کے کام ہیں۔ ہر نیکی کا ایسا شوق ہو جیسے قیمتی کھانے اور کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اور ہر گناہ اور شک و شبے سے ایسا بھاگنا جیسے آگ اور سانپ بچھو سے بھاگتے ہیں۔ فتنے کے زمانے میں دین پر استقامت سے چلیں تو 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمارے سب سے بڑے دوست ہیں، وہ ہمیں برباد نہیں فرمائیں گے، نہایت قدردان ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ ایسی آنکھ جو کبھی سوتی نہیں، ایسی بادشاہت جو ہمیشہ سے ہے، اور ایسی طاقت جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لاکھوں پہلوانوں کو طاقت دینے والے، سائنسدانوں کو عقل دینے والے، اور کروڑوں ماؤں کو رحم دلی دینے والے اللہ ہمارے دنیا آخرت کی ہر مشکل کے لیے کافی ہے۔ مخلوق سب کی سب ایسی عاجز اور بے بس ہے جیسے اینٹ پتھر۔ یہ چیز سیکھنے کی سارے دعوت، تبلیغ، تزکیہ، تصوف، بزرگوں کے پاس جانے کا خلاصہ آخر میں سمجھ میں آ جائے کہ مخلوق ساری کی ساری ایسی عاجز اور بے بس ہے جیسے اینٹ پتھر۔ برائی کی چیزیں ایسا سمجھیے کہ ان کی گلی میں، راستے میں کتے کھڑے ہیں۔ اللہ کو پکار کے دعا کیجئے کہ اے اللہ سارے کتوں کو بھگا دیجئے، اور سارے شر اور فتنے کی چیزوں سے پناہ میں رکھیے۔ کوئی آدمی بھی دنیا میں ہمیشہ خوش اور جوان اور صحت مند نہیں رہتا، किसी को भी नसीब नहीं होता ये, मगर ये नेमतें जन्नत में हर एक को मिलेंगी। दुनिया इस काम के लिए बनी नहीं थी। कोई आदमी दुनिया में हमेशा खुश, जवान और सेहतमंद नहीं रहता, लेकिन जन्नत में हर एक को मिलेंगी, हमेशा के लिए मिलेंगी। अगली बात ये समझिए कि हर दुआ कबूल ही होती है, वही चीज़ मिले या उससे बेहतर मिले या कोई बला टल जाए या आखरत में ज़खीरा होकर मिले, सब दुआ की कबूलियत की शक्लें हैं। अगली बात ये समझ लीजिए कि इबादत, इल्म, दावत, खिदमत, दीन के कामों के लिए हालात सुधरने या सुकून होने का इंतज़ार मत कीजिए। जिस तरह गिरते पड़ते थोड़ा बहुत नेक अमल हो जाए, उस पर शुक्र है। नियत, फिक्र, दुआ और दिल के आमाल का रास्ता बहुत आसान और रोज़ाना पहाड़ों का सवाब आदमी ले सकता है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आदमी तौबा कर ले। एक बुज़ुर्ग तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह मुझको मासूम बना दीजिए कि कोई गुनाह ही ना हो। उनको आवाज़ आई कि भाई तुम मासूमियत की खिड़की से क्यों आना चाहते हो, मैं एक और खिड़की बनाइए तौबा की, उसमें से आ जाओ, तौबा कर लो, तौबा करके आ जाओ। गलती किससे नहीं होती, लेकिन आदमी तौबा करे और अल्लाह के से ताल्लुक़ कायम करे, फिर अपने पास पड़ोस, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, शहरों में दीन फैलाने की मेहनत करे, दीन फैलाने की मेहनत करे। दरूद शरीफ पढ़ के उम्मत के लिए, अपने लिए और सारे जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह पाक से मांगिए। और मांगने का बेहतरीन वक्त रात का है, आखिरी पहर में उठिए और अल्लाह से मांगिए। यहाँ पर तालीम के वास्ते कुछ दुआएँ पढ़ी जाती हैं कि उसमें नेक लोगों का मजमा है, लोग कहाँ कहाँ से माशाल्लाह वक्त फारिग करके आए हैं, अल्लाह पाक उनके सदक़े कोई नेक आदमी बैठा हो मजमे में तो हम सब की दुआएँ कबूल हो जाएँ, इसलिए मजमे में दुआ मांगने के लिए कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کو نفع دینے والا علم عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت کو آسان رزق عطا فرمائیے، اے اللہ تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ علم دین پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو برکت دیجئے، گھر گھر میں حافظ عالم عالمات پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، بچوں کی، مردوں کی، عورتوں کی یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں، یا اللہ ہر شر فتنے و فساد سے یا اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ شکر و تسبیح اور دعائیں، اچھی نیتیں، تلاوت، اے اللہ ہمارے زبان اور دل میں جاری فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے جتنے حادثات، مصیبتیں، پریشانیاں، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ آسان زندگی، حیات طیبہ عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اے اللہ رات کے آخری پہر میں، مساجد میں، کعبہ شریف میں، رمضان اور حج کے موقع پر، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں دنیا میں کہیں کہیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھائی بہن، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جتنی نیک حاجات ہیں، اے اللہ غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ سب لوگ اپنی حاجات اللہ آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ کتنی زبانوں میں لوگ پکارتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ سب کچھ دیکھنے والے، سب سننے والے ہیں، اے اللہ آپ ڈرنے والوں کی پناہ ہیں، اے اللہ چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے ہیں، اے اللہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جوڑ دیتے ہیں، اے اللہ ہم مصیبت زدہ، محتاج، بے قرار، آفت زدہ کی طرح سوال کرتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت، عافیت، مغفرت، اونچے درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ بزرگی اور عظمت والے ہیں، آسمان و زمین کے نور ہیں، اے اللہ آپ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والے ہیں، غمزدہ کو راحت پہنچانے والے ہیں، اے اللہ شفا دینے والے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے ہر حاجت پیش کی جاتی ہے، اے اللہ چین، سکون، اطمینان، ہر نیکی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں فرما برداری ڈال دیجیے، اے اللہ برے کاموں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیشہ رہنے والا ایمان، خشوع کرنے والا دل، سچا یقین، اے اللہ شکر کرنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم ہر اس گناہ سے معافی مانگتے ہیں جس نے ہم نے توبہ کی پھر اس کو کر لیا، اے اللہ ہم نے وعدہ کیا مگر اس کو توڑ دیا، اے اللہ قوت حاصل کی مگر نافرمانی کر دی، اے اللہ نیکی کرنے چلے مگر اخلاص ختم ہو گیا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ بے شک آپ ہمیں خوب جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ نیک صالحین صدیقین کے اللہ اخلاق اچھی باتیں ہمیں دے دیجیے، اے اللہ جو لوگ دنیا میں دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ مساجد میں اور اللہ تعلیم و تعلم میں اور دعوت میں، اے اللہ پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں خیر کے کام کر رہے ہیں تسبیح تلاوت صدقات نماز روزہ، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جو جو لوگ امت میں یا اللہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں ہماری بھائی بہنیں اے اللہ دین کے جو جو شعبے میں خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ سچائی و اخلاص عطا فرمائیے، اے اللہ شیطان و نفس کے شر سے بچائیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں ہمارے وقت میں دن رات میں برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.